हरे कृष्ण। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 10। अध्याय का नाम है वृतास देवताओं तथा वृतासुर का युद्ध। श्लोक संख्या 12। यत अक्षासु यत अक्षास मनोबुद्धि तत्वदृक् ध्वस्पन्धना आस्थिता परमं योगम् ना देहं बुभुदे गतम् यत्तक्षासु मनो बुद्धि तत्वदृगं ध्वस्तबन्धना आस्थिता परमं योगम् नादेहं बुभुदे गतम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की यत वश में अक्ष इंद्रिया असु प्राणवायु मनः मन बुद्धि बुद्धि तत्वदृक् तत्वों एवं भौतिक तथा आत्मशक्तियों का ज्ञाता ध्वस्त बंधना बंधन से मुक्त आस्थितः स्थिर होकर परमम परम योगम ध्यान समाधि को ना नहीं देहम भौतिक शरीर को बुबुधे देखा गतम निकला हुआ। अनुवाद। दधीचि मुनि ने अपने इंद्रियों प्राण मन तथा बुद्धि को संयमित किया और समाधि में खो गए। इस प्रकार उनके समस्त भावबंधन छिन्न हो गए। वे यह नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया। तात्पर्य भगवद गीता 8:5 में श्री कृष्ण का कथन है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। जो कोई अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है वह तत्काल मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निसंदेह मृत्यु के पूर्व ही अभ्यास करना चाहिए, किंतु पूर्ण योगी अर्थात भक्त श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए समाधि में मरता है। उसे यह पता नहीं चल पाता कि उसका शरीर आत्मा से पृथक हो रहा है। आत्मा तुरंत वैकुंठ लोक को चला जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति। आत्मा पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता, वरन वह भगवान के धाम चला जाता है। यह भक्ति योग ही परम योग विधि है, जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवद्गीता 6:47 में कहा है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गता अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मांसम युक्त तमो मता। समस्त योगियों में से जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर प्रेम में भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, मैं मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ है। भक्ति योगी श्री कृष्ण का चिंतन करता है, अतः मृत्यु के समय मैं अपने आप को मृत्यु की वेदना सहे बिना कृष्ण लोक में स्थानांतरित कर सकता है।
हरे कृष्णा। तो हम सब साधकों लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम का, देवताओं तथा वृतासुर का युद्ध। और प्रसंग इस प्रकार है कि भगवान देवताओं की प्रार्थना सुनते हैं। देवता इसलिए प्रार्थना करते हैं कि वृतासुर के सामने प्रकट होता है और वृतासुर के ऊपर जब देवता प्रहार करते हैं तो वृतासुर देवताओं को उनके अस्त्रों समेत निगल लेते हैं। तो सब देवता भयभीत हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, उनकी ये प्रार्थना होती है कि आप अवतार लीजिए, इस असुर का वध कीजिए। भगवान बोले, हम तो उन करेंगे नहीं, आपकी प्रार्थनाएं अच्छी हैं, आपको उपाय बता देंगे कि आप दधीचि मुनि के पास जाइए और उनसे उनका शरीर मांगिए। उनका शरीर बहुत बलवान है और उनके शरीर स्वयं नारायण का चुदार रक्षित है, और उसके शरीर से जो हड्डियां मिलेंगी उससे आप ब्रज बनाएंगे और उस वज्र से आप वृतासुर का वध करवाएंगे। तो देवतागण सभी आते हैं दधीचि मुनि के आश्रम में, उनसे निवेदन करते हैं और दधीचि मुनि जो कि उनका पूरा जीवन समर्पित है जन लोगों के हित के लिए, तो वो तैयार हो जाते हैं अपने शरीर को त्यागने के लिए। और पिछले श्लोक में बताया गया जो कि सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस ढंग से उन्होंने शरीर छोड़ा। पिछले श्लोक में बताया गया सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार अथर्वा के पुत्र दधीचि मुनि ने देवताओं की सेवा के लिए अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने अपने आप आत्मा को श्री भगवान के चरणबिंद में रखकर पंचभूत से निर्मित अपने स्थूल शरीर को त्याग दिया। और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि वो शरीर कैसा त्यागा। यत अक्ष असु मनोबुद्धि, ऋषि मुनि ने अक्ष अर्थ हुआ इंद्रियां, असु का अर्थ हुआ प्राणवायु, मन और बुद्धि, इनको संयमित किया। और फिर क्या हुआ, आस्थिता परमम योगम, और वो समाधि में चले गए। इससे क्या हुआ, ध्वस्त बंधना, समस्त बंधन छिन्न हो गए, क्योंकि वो तत्वदृक, वो तत्व को जानते थे। क्या जानते थे, क्या भौतिक शक्ति है, क्या आध्यात्मिक शक्ति है, मैं आत्मा हूं। आत्मा को उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने मन बुद्धि प्राणवायु इंद्रियों को संयमित में किया, समाधि में चले गए। जब ऐसा किया तो क्या हुआ, वो ये नहीं देख सकते थे कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से पृथक हो गया, स्मूथ पता ही नहीं चला कि कैसे शरीर आत्मा से अलग हो गया, बिल्कुल मालूम नहीं चला, कोई संकट नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कितना स्मूथली उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो इस श्लोक में बहुत सुंदर हमें शिक्षा मिलेगी कि चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, एक दिन तो हमें शरीर त्यागना ही है, मृत्यु का नाम आते ही हम कांप जाते हैं। लेकिन आज के श्लोक से हम देखेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे कि मृत्यु वास्तव में हमारा शत्रु नहीं है, मृत्यु से हम मित्रता कर सकते हैं, करेंगे मृत्यु से मित्रता। तो आज के श्लोक से हम देखेंगे कि मृत्यु को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि मरना तो है एक दिन सबको, तो क्यों ना दधीचि मुनि की तरह शरीर छोड़ा जाए, पता ही नहीं चला। अन्यथा हम सब ने अपने सगे संबंधियों को देखा होगा कि कैसे वो शरीर छोड़ते हैं, कितनी पीड़ा में शरीर छोड़ते हैं। करुण प्राण में क्या बताया गया, कितने बिच्छुओं का लगता है डंग, 40 बिच्छू है ना, तो बहुत भयभीत अवस्था होती है, हमारा मन विचलित होता है, शरीर की इंद्रियां काम नहीं कर रही होती, और इतनी आसक्ति होती है, और उसके बीच में शरीर छोड़ना नहीं पड़े, जबरदस्ती आत्मा को निकालना पड़ता है, बहुत भयभीत अवस्था होती है। और लोग डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते हैं बढ़ा दो किसी ढंग से, वेंटिलेटर पर व्यक्ति पड़ा रहता है, लेकिन कुछ नहीं, मृत्यु कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, और मृत्यु सबको चाहती है। मृत्यु हमारे नित्य संगी है। कैसे नित्य संगी है, हमेशा हमारे साथ चल रही है। वैसे जो हमारे मित्र संगीगण है, संबंधी हैं, वो हमें पीछे छोड़ देंगे, लेकिन मृत्यु हमेशा हमारे पीछे रहती है, हम मृत्यु के आगे रहते हैं। मृत्यु का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा दी जा सकती है डेथ की, मृत्यु की, चेंज ऑफ बॉडी, बिल्कुल ठीक बताया, शरीर परिवर्तन करना है ना। तो देखा जाए हर क्षण हम शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, हर क्षण, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति की विशेषता है कि प्रति क्षण एक नया शरीर जीवात्मा को दे रही है, हमें मालूम नहीं चलता। तो प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं, किसी को याद है, क्या उदाहरण देते हैं ये समझाने के लिए, जैसे कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो अलग अलग लिए जाएं और फिर उसको बनाया जाए पूरा, तो पूरी फिल्म सिनेमा जो हम देखते हैं कंटिन्यूअस लगती है, लेकिन वास्तव में अलग अलग सीन्स हैं, अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, स्टिल्स हैं, लेकिन उसको इस ढंग से घुमाया जाता है कि वो पूरा लगता है जैसे मूवी चल रही है, चलचित्र चित्र है, वो चलता हुआ लगा रहता है। इसी ढंग से हमारे जीवन प्रत्येक क्षण शरीर बदल रहा है, तो एक तरीके से प्रत्येक क्षण हम लोग मर रहे हैं, इसलिए बोला गया मृत्यु हमारी नित्य संगी है। तो जब हमारे नित्य संगी है तो उसको क्यों ना अच्छे ढंग से हम समझें कि क्या है, क्यों है, कैसे है। जब सब मालूम चल जाएगा तो हम उसे मित्रता कर सकते हैं, लेकिन उससे डर के रहेंगे और भयभीत रहेंगे, उसको गलत समझेंगे, तो हम लोग भयभीत की अवस्था में रहेंगे और अज्ञानता में रहेंगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान ने गीता में मृत्यु का ज्ञान देते हैं। अब बताइए इस संसार में कौन व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त करने आता है, हर व्यक्ति ये ज्ञान ये प्राप्त करता है कि हम अपने जीवन के स्तर को कैसे आगे बढ़ाएं, बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं कि जीवन में खुश कैसे रहे, उस जीवन को और कैसे खुशहाल बनाएं, जीवन में आगे कैसे बढ़े। कहीं भी ऐसे सेमिनार नहीं होते जहां पे ये चर्चा की जाए, यहां पे कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है, पाठशाला विद्यालय नहीं है जहां पे ये ज्ञान दिया जाए कि मृत्यु का कैसे सामना किया जाए, कैसे मरे। आर्ट ऑफ लिविंग तो है, आर्ट ऑफ डाइंग कहीं नहीं है। अगर समझ लो एक सोसाइटी हो जो पब्लिकेशन ऐसा पब्लिसिटी करे आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु का सामना, कोई जाएगा ही नहीं वहां पर, कोई जाएगा, वो रहेगा आर्ट ऑफ लिविंग, लिविंग इन स्टाइल एग्जीबिशन। बड़े बड़े फाइव स्टार्स में होती है लिविंग इन स्टाइल, और सब जाते हैं स्टाइल में जिएंगे, क्यों ना डाइंग इन स्टाइल हो। स्टाइल में कैसे मरना है, रोते हुए आए थे, रोते हुए जाएंगे, ये कोई स्टाइल नहीं है। रोते हुए जाएं और रोते हुए आए और हंसते हुए जाएं, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो कृष्ण भक्त कहलाएगा। तो आज ये चर्चा करेंगे कि कैसे हंसते हुए जाए, जैसे दधीचि मुनि हंसते हुए गए। अब देखिए देवता उनके पास आए, भी शरीर दे दो, वृत्तासुर का वध करना है, ले लो। क्या किया, आत्मा को भगवान के चरणों में लगाया, मन बुद्धि प्राण इंद्रियां सारी कंट्रोल की, समाधि में चले गए, पता ही नहीं चला कैसे शरीर चला गया स्मूथ हंसते हुए। तो क्यों ना हम ये ज्ञान प्राप्त कर ले कि हंसते हुए कैसे शरीर से त्याग करें। मृत्यु हमारा मित्र कैसे है, क्योंकि मृत्यु से हमें अवसर प्राप्त होगा एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जाने के लिए। हमें से सब लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं, एक स्टूडेंट भी प्रोग्रेस करना चाहता है, कोई स्टूडेंट अंदर एडमिट हुआ, जीवन भर नर्सरी में एडमिट हुआ, नर्सरी में ही रह जाए, आयु कितनी है 25 साल, अभी कौन सी क्लास में, नर्सरी में। अरे बेवकूफ व्यक्ति है, अभी तक नर्सरी में पढ़ा है। प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, नर्सरी से फर्स्ट में, सेकेंड थर्ड, ऐसे आते आते पीएचडी करो, कितना आगे बढ़ो। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो मृत्यु हमारा मित्र है जो हमें अवसर देगा हम आगे बढ़े। मृत्यु ऐसा मित्र है, समझ लीजिए वो हमारा हमारी नाव है, लंगर लगा हुआ है, लंगर खोल देगा कि जाओ घूम के आओ, एक नए क्षितिज में जाओ, पूरा देखो आगे दुनिया क्या है। तो इसलिए मृत्यु से हमें डरना नहीं है और मृत्यु को अच्छे ढंग से समझना है। वैदिक शास्त्रों का जो सर्वोत्तम ज्ञान है वो हमें बताता है कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ततो जयम उदीरयेत, और सबसे ऊंचा ज्ञान है वेदांत, और वेदांत की सबसे नेचुरल कॉमेंट्री क्या है, श्रीमद भागवतम। इसलिए हम कहते हैं नारायण अनुस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततो जयम उदीरये, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्र पर विजय दिला दे, ये है श्रीमद भागवतम। तो वैदिक शास्त्रों की जो पर उत्तम ज्ञान है वो हमें बताता है कि मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करें। आजकल के जो साइंटिस्ट है, जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, तो साइंटिस्ट लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं मृत्यु से बचाने के, डॉक्टर्स लोग बड़ा प्रयास करते हैं मृत्यु से बचाने के लिए। जब वो किसी पेशेंट को बचा नहीं पाते तो बहुत फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं, क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोबोट से ऑपरेशन करेंगे, लेजर से ऑपरेशन करेंगे, पूरा विश्वास होता है अपने वेंटिलेटर पर, अपने मशीनों पर कि इस पेशेंट को हम बचा लेंगे या कुछ अवधि तक आयु बढ़ा लेंगे। तो साइंटिस्ट डॉक्टर हुआ जाते हैं, साइंटिस्ट डॉक्टर को खुद ही यमराज आके पकड़ लेता है, वो क्या दूसरों को मृत्यु से बचाएगा, वो खुद उसको मरना पड़ता है। तो हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो हमें बताता है कि मृत्यु पर कैसे विजय प्राप्त करें, और जो ज्ञान आगे बढ़ रहा है प्रभुपाद ईशोपनिषद में बताते हैं, जो आज का आधुनिक ज्ञान आगे बढ़ रहा है वो क्या है, एटम बम बना रहा है, वो मृत्यु को और तेजी से ला रहा है, डिवेस्टेशन, मृत्यु और नजदीक आ रही है। जबकि ज्ञान का अर्थ यह है कि हम मृत्यु को पूर्ण रूप से टाल सकें, लेकिन आधुनिक ज्ञान मृत्यु को और नजदीक बुला रहा है। तो जातस्य ही ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो दोबारा से मां के घर में प्रवेश करता है उसको फिर से शरीर मिलेगा। शरीर का अर्थ है मरना, मरना पड़ेगा। जितना मर्जी हम प्रयास कर ले मृत्यु को रोकने का, हम रोक नहीं पाएंगे। पुराणों में कथा आती है कि एक बार व्यास देव जी के दादाजी थे, उनका नाम लिखा नहीं हुआ, हम जानते हैं उनका नाम क्या है, उनके पिताजी थे पराशर मुनि के पिताजी, कोई जानता हो तो बताए, शक्ति, ऋषि शक्ति, धन्यवाद प्रभु। तो ऋषि शक्ति थे, वो वृद्ध हो गए, तो उन्होंने पौत्र व्यासदेव से कहा, आप तो भगवान के अवतार हो और मुझे मृत्यु से बहुत भय होता है, कृपया करके कुछ ऐसा उपाय करो मैं मृत्यु से बच जाऊं। व्यासदेव ने कहा, देखिए सृष्टि की रचना है, प्रकृति के नियम है, आपको शरीर तो त्यागना पड़ेगा। बोले फिर भी इतने बड़े आप ऋषि हो, भगवान के अवतार हो, कुछ प्रयास तो करो। यमराज से के बात क्यों नहीं करते यमराज से, तुम्हारे साथ चलता हूं, आपका नाम है भैया, जाके बात तो करो। बोले आप कहते तो चले जाते हैं, यमलोक में जाते हैं, यमराज जी को प्रणाम करते हैं, भी ये समस्या है, मेरे दादाजी हैं, मैं को मालूम है संभव नहीं, लेकिन क्या करूं आपके सामने आ गया हूं। यमराज जी बोला मैं जानता हूं आपकी व्यथा, मैं क्या करूं, मेरे पास पूरा कंट्रोल नहीं है, मैं तो खाली कर्मों का फल देता हूं, ये तो महाकाल पुरुष हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। चलो तो जाने लगे तो ऋषि शक्ति ने, जो कि उनके दादाजी थे, बोले अकेले व्यासदेव जाएंगे महाकाल पुरुष के पास, थोड़ा भार कम पड़ेगा। यमराज जी को बोला आप क्यों नहीं चलते साथ में, थोड़ा अच्छा रहेगा, आपकी भी अप्रोच काम आ गया, आपका भी कुछ रुतबा है। हमें बोला चलो ठीक है, आप कहते मैं भी चल पड़ता हूँ, वो भी आ गए। फिर दोनों महाकाल पुरुष के पास गए, ये समस्या है, व्यासदेव जी ने रिक्वेस्ट की, मेरे दादाजी हैं, मरना नहीं चाहते, कुछ कीजिए, मैं क्या करूं, शर्म आ रही आपसे बात। महाकाल पुरुष ने बोला देखो मैं देखो क्या करूं, मेरे पास तो जो भाग्य फल आता है वो मैं उसके हिसाब से आगे ऑर्डर दे देता हूं। अच्छा देखो चित्रगुप्त के पास जाओ, उनका क्या भाग्य फल है मालूम करके लाओ। तो चित्रगुप्त के पास जाने लगे। अब ऋषि शक्ति जो थे वो बड़े भयभीत थे, महाकाल पुरुष के पास गए, आप भी चलो ना साथ में, पता नहीं हमारी बात माने ना माने, आप चलेंगे स्वयं महाकाल पुरुष अच्छा रहेगा। बोले ठीक है आप आयो, कभी कभी पैसे तो आते नहीं, रोज तो आते नहीं, चलते हैं। तो महाकाल पुरुष, यमराज जी, व्यासदेव जी और ऋषि शक्ति जो उनके दादा, ये सब चित्रगुप्त के ऑफिस में गए। हाँ जी क्या मदद कर सकता हूँ, ये समस्या है, जरा देखो इनका क्या फाइल में क्या लिखा हुआ है। फटाफट उन्होंने फाइल निकाली और बोला वाह इनके भाग्य में तो लिखा हुआ है इनको मृत्यु आएगी नहीं। अरे ऋषि शक्ति बोला सब खुश हो गए, मृत्यु नहीं आएगी, वाह बहुत खुश हो गए। एक मिनट आगे ये लिखा है वैसे मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन जब जिस स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे, जहां पर स्वयं यमराज हो, महाकाल पुरुष हो और व्यासदेव के खुद देवता हो, निश्चित रूप से मृत्यु आएगी। और बात पूरी नहीं हुए थे ऋषि शक्ति। तो देखिए उन्होंने कितना प्रयास किया, कितनी अप्रोच लगाई, लेकिन अगर मृत्यु ने पकड़ना होता है तो कैसे पकड़ लेती है ना। हम सबका ये व्यक्तिगत कई अनुभव होंगे कि किसी व्यक्ति ने ट्रेन में जाना है, वो नहीं गया, उसका मित्र चला गया और वो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, है ना। अभी हॉस्पिटल में हमारे एक भक्त थे, उनके भाई के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बिल्कुल ठीक ठाक थे, सरकारी अस्पताल था, एक नर्स आई, कुछ 10 इंजेक्शन गलती से लगा गए, किसी और को लगाना था उसको लगा दिए, वह व्यक्ति उसी समय शरीर त्याग दिया, बिल्कुल ठीक था, युवा 26 साल का व्यक्ति। तो जिस मृत्यु ने जिसको पकड़ना है वो पकड़ लेती है, हम चाहे जितना मर्जी प्रयास करें। तो जब ये आनी ही है और हमारी नित्य संगी मित्र बताई गई है, तो क्यों ना हम डिटेल में स्टडी करें कि है क्या ये। दधीचि मुनि की क्या खासियत थी, यहां बताया गया, इस श्लोक को हम देखें। यत अक्षा असु मनो बुद्धि तत्वदृक विध्वस्त बंधना आचिता परमम योगम ना देहे बुभुदे गतम। उन्होंने अपने इंद्रिया, मन, बुद्धि और प्राण को नियंत्रित कर लिया और समाधि में चले गए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मृत्यु के समय हम ये नहीं कर पाएंगे, क्या करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब हम मृत्यु के समय इसको कर पाएंगे। जैसे कि अभ्यास क्या करना पड़ेगा, मन, बुद्धि और इंद्रियों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कैसे करें, इसको हम भगवान की सेवा में लगाएं। अभ्यास योग युक्त न चेतसा न अन्य गामिना, भगवान गीता के 8वें अध्याय में बताते हैं, हमें ढंग से अभ्यास करें कि हमारी चेतना, हमारा मन और कहीं ना भटके और हमारा मन पूर्ण रूप से किसके चरणों में लग जाए। अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण रूप से सेवा में रत होंगे। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान बताते हैं कि अगर कोई पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा रहता है तो मृत्यु के समय उसको कोई भ्रम नहीं होता। जैसे बता रहे हैं तत्वदृक, वो तत्वदृक बन जाता है, तत्वदर्शी बन जाता है, उसे कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहते, गलत धारणाएं नहीं रहती। जितना भी भय हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो गलत धारणाओं से उत्पन्न होता है, मिसकंसेप्शन से उत्पन्न होता है। तो कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहती जिसने आजीवन सेवा में अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाया है। जो व्यक्ति सेवा कर रहा है, प्रभुपाद लिखते हैं, वो ज्ञान की मूर्ति है, सेवा से ही हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो जो भगवान के चरणों की सेवा में लगा हुआ है उसको कोई गलत धारणाएं नहीं रहती, जबकि कोई गलत धारणाएं नहीं रहती तो वो भय से मुक्त हो जाता है। भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय में क्यों भय उत्पन्न होता है ये बताया गया है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, नव योगेंद्र बोलते हैं, कवि योगेंद्र राजा नेमी को बताते हैं, भयम त्वदीयाभिनिवेशता स्यात् ईशाद अपेतस्य विप्रयो अस्मृति तन्मायया तो बुद्ध अवजेत ताम भक्त्या एक अश्यम गुरु देवात्मा। इसको समझने का प्रयास कीजिए, भयम द्वितीय अभिनिवेशता स्यात्।
आप में से कोई यहां पर ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल भय से मुक्त हो?
ये संसार हमेशा बदल रहा है, हमें कितने भय रहते हैं, है ना। हमारी जॉब में कुछ परिवर्तन आ जाए, हमारी सेवा में कुछ परिवर्तन हो जाए, आसपास की परिस्थितियां बदल रही हो, देश की पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही हो, बिजनेस की कंडीशन बदल रही हो, घर बदलना हो, शहर बदलना हो, हर चीज जब बदल रही हो तो कितनी चिंता शुरू हो जाती है, आगे क्या होगा, और अब शरीर बदलना है, क्या होगा, मृत्यु कितना बड़ा भय है, मेरा क्या होगा, मेरे संबंधियों का क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, हर स्थिति देखिए हमारा जीवन पूरा जीवन भय में निकल जाता है। और मृत्यु में के समय बहुत डरते डरते शरीर त्यागते हैं, मरते हैं, और फिर अगला जीवन फिर भय भय भय, है ना। तो बताया गया है ये भय क्यों उत्पन्न हो रहा है, भय द्वितीय अभिनिवेशता से आत। भय इसलिए उत्पन्न होता है, अभिनिवेशता एब्जॉर्ब्ड है, लगा हुआ है किसमें, द्वितीय में। द्वितीय का अर्थ है ऐसी वस्तु जो कृष्ण से अलग है, द्वितीय का दूसरा अर्थ है मैटर पदार्थ, यानी कि ये शरीर, इसको शरीर को द्वितीय बताया गया क्योंकि ये आत्मा से उत्पन्न हुआ है, आत्मा आत्मा से पदार्थ आता है, इसलिए इसका सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन प्रभुपाद लिखते हैं, इसलिए द्वितीय है। तो जब हमारा मन पदार्थों में लगा रहेगा, शरीर और शरीर से जुड़ी वस्तु में एब्जॉर्ब रहेगा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, मेरा बिजनेस, धन, प्रॉपर्टी, इसमें पूर्ण रूप से लहेगा, तो क्या होगा, भय भय उत्पन्न होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इशाद अपेतस्य विप्रयो अस्मृति, क्योंकि हम कृष्ण से अमुक विमुख हो गए हैं, विप्रयो अस्मृति हमारी स्मृति चली गई है, हम भूल गए हम कृष्ण के अंश हैं। तो तब क्या होता है, तन माया तो बुद्ध अभजेत तम, तब माया अपनी आवरणात्मिका शक्ति से, जैसे हम कृष्ण से विमुख होते हैं, आवरणात्मिका शक्ति से माया हमारा ज्ञान ढक देती है, चित्त शक्ति से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हम कृष्ण के अंश हैं, माया की आवरणात्मिका शक्ति इस चित्त शक्ति को ढक देती है और हमारा स्मरण, हम कृष्ण को भूल जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय है भक्तिया एक अयशम गुरु देवात्मा, हम बिल्कुल क्या करें, अविचल होकर अविचारणी भक्ति करें, केवला भक्ति करें, कैसे, गुरु के निर्देशों में। और गुरु के निर्देश कैसे पालन करने हैं, गुरु को देवात्मा, गुरु को अपना एक विग्रह मानना पड़ेगा जिसकी हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, वर्शिपेबल डीटी, गुरु को एक वर्शिपेबल डीटी, एक अर्च विग्रह के समान उनकी पूजा करते हुए मानते हुए लाइफ एंड सोल देवात्मा अपना जीवन समझना पड़ेगा, और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम भय से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि अगर हम गुरु की शरण में नहीं हैं और गुरु की अगर शरण में भी हैं तो गुरु को एक ठीक है साधारण नहीं तो चलो कुछ ज्यादा मुझसे एक्सपीरियंस्ड सीनियर है बस इतना ही मान रहे हैं तब भी काम नहीं चलेगा, तब भी हम भयभीत रहेंगे। भक्तिसांस ठाकुर महाराज कहते हैं हमारे जीवन में जितने अमंगल हैं उस सब की जड़ ये है कि हम गुरु को साधारण मनुष्य मानते हैं, सारे अमंगलों की जड़ ये है, साक्षात हरित्वेन, उनको ईश्वर के समान समझना चाहिए, हरि के समान समझना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए, तब हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं तो हमारा मन इतना चंचल है हर आज्ञा में डाउट खड़ा कर देगा, क्यों भाई क्यों है? ऐसा क्यों क्यों ऐसे क्या जरूरी है, इनको शायद पता नहीं है। तो हम अपना मन, हमारा मन क्या करता है, सारे हमारे दुखों का, भय का, चिंताओं का कारण ये मन है। मन से हम कुछ प्लान बना लेते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उस प्लान को हम चाहते हैं कि हर कोई इस संसार का प्रत्येक जीव इस प्लान के साथ कोऑपरेट करे, कोई भी नहीं करेगा, कोई करेगा आपके प्लान से, मैं क्यों कोऑपरेट करूं, क्यों करूं भाई, मेरा अपना प्लान है, आपका अलग प्लान है। जब कोई कोऑपरेट नहीं करता तो हमें डर लगता है, चिंता होती है और भय उत्पन्न होता है। तो अगर इस भय से मुक्त होना है तो अपने आप को अपने मन, अहंकार और इच्छाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी आसक्तियों से ऊपर उठना पड़ेगा। नहीं, आसक्ति कहीं तो लगानी पड़ेगी, वो गुरु के आदेशों में।
तभी हम भय से मुक्त होंगे, नहीं तो डरते डरते जीते रहेंगे और डरते डरते मर जाएंगे, फिर नया जन्म, फिर डरते डरते सब कुछ होता रहेगा। ये कोई जीना भी कोई जीना है? साधारण भाषा में लोग बोलते हैं ना, ये जीना भी कोई जीना है? जियो हमेशा खुशहाल होकर, लेकिन नकली हंसी से ऐसे बोल देना कि रोज सुबह उठकर शीशे के सामने जोर जोर से हंसे, हा 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 हा, आज मैं बहुत खुश रहूंगा, सब अच्छा रहेगा, ऐसे कहने से जीवन बदलने वाला नहीं है। जीवन बदलेगा जब हम अपना अंतःकरण बदलेंगे। मोबाइल की सिम बदले नहीं बोले कि नंबर बदल जाए, नहीं, तो हमें अपना अंतःकरण बदलना पड़ेगा। अंतःकरण कैसे बदलेंगे? पूर्ण रूप से किसके अनुसार जीवन चलाएंगे? गुरु की आज्ञा के अनुसार। जब हम देखेंगे, अगर इसका प्रयास करेंगे, हमारे सारे भय समाप्त हो जाएंगे। शिला प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद स्वामी को भेजा, जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो। पाकिस्तान में मुसलमानों ने उनको पकड़ लिया, गन यहां लगा दिया, अबाउट टू शूट, डरे नहीं। उस समय क्या बोले? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस पता नहीं परमात्मा उस मुसलमान के हृदय में बैठे थे, क्या इंस्पिरेशन आया, बोला इस बार ही छोड़ रहा हूं, आगे से नहीं छोड़ूंगा, जाओ। छोड़ दिया। कितना रिस्क उठाया प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने, कुछ भी करने, प्रभुपाद ने कितना रिस्क उठाया, वृद्ध अवस्था में चले गए। क्यों? गुरु के आदेशों में दृढ़ विश्वास, गुरु को वर्शिपेबल डिटी के रूप में पालते। अन्यथा अपने मनोधन के चलने के हिसाब से हम मुक्त नहीं हो सकते। कोई बोल सकता है मुझे तो कोई गुरु का आदेश मिला नहीं, पता नहीं गुरु जी के, हमारे गुरु के तो हजारों शिष्य हैं, पता नहीं हमारा नाम जानते भी नहीं होंगे, क्या होंगे, मेरे क्या आदेश मिलेगा? गुरु के आदेशों का पालन करो। क्या आदेश है मेरे लिए बताओ, क्या आदेश है? देखिए लड़के पहले भी वही था, अब भी वही, कोई आदेश नहीं है। क्या आदेश देते हैं गुरु? सबसे सिंपल आदेश देते हैं, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करो, 4 नियमों का सख्ती से पालन करो, 1 घंटा शास्त्र का अध्ययन करो। ये तीनों कार्य हो रहे हैं, बताइए जरा। हमें से कितने लोग कह सकते हैं हम ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़ते हैं? यही आज्ञा का पालन नहीं होता। और दूसरा, स्वयं प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं, उनके तात्पर्य हमारे लिए आदेश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये खाली पढ़ने या बोलने के लिए नहीं है, इनको समझकर, इनकी चर्चा करके अपने जीवन में उतारने के लिए है। तो शिक्षाओं की कमी, इंस्ट्रक्शंस की कमी नहीं है हमारे जीवन में, फुल ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। कितने इंस्ट्रक्शंस हैं? तो अगर हम इन एक एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर मेडिटेट करते रहे, उसको अपना जीवन ले लें, तो निश्चित रूप से हम भय से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा इस जीवन में हम भय से मुक्त नहीं हो सकते। अपनी आसक्तियों से, अपने अहंकार से, अपने मन के स्तर से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, फिर हम मृत्यु के लिए भी तैयार होंगे, तत्व दृक् बन जाएंगे, जैसे कि दधीचि मुनि हम देखते हैं, दधीचि मुनि अपने लिए जीवन नहीं जी रहे थे, जैसे पिछले शनिवार हमने चर्चा की थी। जो लोग अपने लिए जीवन जीते हैं, उनका तो पेड़ पौधे और पर्वत भी बोलते हैं धिक्कार है, शेम शेम की आवाज हमें सुनाई देती है कभी? हमें हो सकता है सुनाई ना देती हो, लेकिन शेम कर रहे हैं जितने भी पेड़ खड़े हैं, जितने भी पर्वत हैं, बोला धिक्कार है, पत्थर हृदय है, अपने लिए सोचता है, केवल अपने लिए सोचता है, वो कृपण है। जब भी हम केवल अपने लिए सोच रहे हो, हमें ये बात याद नहीं चाहिए, सारे पेड़ पौधे सारे पर्वत शेम कर रहे हैं, धिक्कार है। और ऐसा कृपण व्यक्ति मूर्ख है, और ऐसा कृपण व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, अपने इस जीवन में भी दुखी रहेगा और मृत्यु के समय बहुत भयभीत रहेगा, मल मूत्र त्यागेगा यमदूतों को देखकर, कितनी भयभीत अवस्था है। तो दधीचि मुनि ने क्या किया? उन्होंने बोला ये जीवन तो दूसरों के हित के लिए है, ले जाओ, क्या चाहिए? शरीर से संबंधित जो धन है सब कुछ ले जाओ, कोई दिक्कतें नहीं है। मरने से पहले ही हमें मर जाना चाहिए, डाई बिफोर यू डाई, शरीर छोड़ने से पहले ही हमें मर जाना चाहिए। हमें इस जंग से जीवन जीना चाहिए कि बिल्कुल अनासक्त हो जाए, हमारा भौतिक जीवन मृत्यु आने से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो। श्रीमद् भागवतम के 3rd स्कंध में भगवान कपिल कहते हैं कि भक्ति से हमारा सूक्ष्म शरीर गल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि पेट की जठरा अग्नि में कुछ खाना डालते हैं वो समाप्त हो जाता है, पेट की अग्नि उसको जला देती है। इसी ढंग से तीव्र भक्ति करने से हमारा सूक्ष्म शरीर जल जाता है, गायब, और बाकी वजह स्थूल शरीर, इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया, आप बिल्कुल अलग हो गए, कोई दिक्कतें नहीं। बताया गया सूखे नारियल की तरह कल आवाज आएगी, अंदर ऊपर की कवरिंग से अंदर का जो गोला है बिल्कुल अलग है, हमारी स्थिति है कच्चे नारियल की तरह, कितना पीड़ा होती है बताइए, उस नारियलों की इतनी पीड़ा होती होगी, उसमें से मलाई निकालनी होती होगी, तो नारियल की जो आउटर कवरिंग है उसमें से जो अंदर मलाई उसको अलग करना हो तो कितनी पीड़ा हो, कर सकते हैं कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारी इस तरह से स्थिति, इतने आसक्त हैं, लेकिन अगर इसको पूर्ण रूप से गुरु और कृष्ण की सेवा में लगा दें हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं है, आराम से चलेंगे। तो ये तत्वधृक बनने के लिए जीवन भर हमें प्रयास करना पड़ेगा, जीवन भर। हम अपने आप को देखें, हम क्या हमेशा भयभीत रहते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए? जब छोटी छोटी चीजों के लिए इतने भयभीत हैं तो मृत्यु के समय क्या हालत होगी, क्या हालत होगी? मृत्यु तो फाइनल एग्जाम है और जो जीवन है ये प्रिपरेटरी लीव है, तैयारी करो। मृत्यु ऐसा एग्जाम है जैसे कोई डेट शीट नहीं है, कब आएगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। क्वेश्चन पेपर क्या है, भगवान कहते हैं क्या चेक करूंगा, यम यम वापिस स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, तम तम वेद कौनते सदा तद्भाव भाविता। सीधी बात है, क्वेश्चन पेपर ये है, आपका ये देखा जाएगा मन के अंदर क्या भाव है, ये नहीं देखा जाएगा आपके पास जो शेयर है उसके क्या भाव है, आपके जो लॉकर में सोना चांदी पड़े उसका क्या भाव है, वो नहीं देखा जाएगा, आपके मन के अंदर क्या भाव है वो देखा जाएगा। अब पूरा जीवन हमने शेयर इकट्ठे करने में लगा दिया, सोना चांदी इकट्ठे करने में लगा दिया, बड़े उसके भाव बढ़ेंगे भैया, बहुत फायदा होगा है? उसके भाव तो देखेंगे नहीं भगवान, बोले मन के अंदर क्या भाव चल रहे ये देखूंगा, बस क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया, कब देखूंगा ये नहीं बताऊंगा। ताकि वी आर ऑलवेज ऑन द टोज, तैयार रहें, किसी भी समय आ सकते हैं, सरप्राइज चेक, दिखाओ मन के क्या भाव है, बोलो बोलो, इसी समय डाला जाए अंदर एक रॉड, मन के भाव चेक करेंगे थर्मामीटर से, तो क्या आएंगे, अपने आप बताओगे, बोलो क्या शरीर चाहिए, दिखाओ आपके सामने पिक्चर है, जैसे मन के भाव होंगे शरीर मिल जाएगा, खत्म, सिंपल। पूरा जीवन इसलिए मिला है अपने मन को हम शुद्ध करें, पूरा जीवन कंपटीशन करेंगे, ये इकट्ठा करना है वो इकट्ठा करना है, उसके साथ द्वेष करना है ये करना है, मन बॉय काला कलूटा मन, शिट क्या चाहिए, शरीर दो फटाफट ले जाओ इसको, यमदूतों को बुलाओ। तो लेकिन अगर मन हमारे पूर्ण रूप से शुद्ध है तो क्या आएंगे, वैकुंठ लोक से यान आएगा, वैकुंठ एयरलाइंस का, जैसे ध्रुव महाराज के लिए आया था, ध्रुव महाराज जा रहे थे तो मृत्यु उनका मूर्ति रूप, पर्सनिफाइड फॉर्म ऑफ मृत्यु उनके सामने आया, उनको प्रणाम कर रहा है, और उन्होंने क्या किया, ध्रुव महाराज ने उनके सर पे पांव रख के सीधा विमान में प्रवेश कर लिया, मृत्यु से डरे नहीं, मृत्यु उनको प्रणाम करने आया और मृत्यु के पांव सर पे पांव रख के आराम से चले गए। तो हम लोग भी इस जीवन को जीत सकते हैं। सोनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए, उन्होंने सूत गोस्वामी से कथा सुननी थी, उन्होंने बहुत अच्छा एक किया, जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो बहुत चतुर होते हैं, बोले सारे ऋषिगण हैं ये मृत्यु के भय से मुक्त रहे, उन्होंने क्या किया, यमराज जी को इनवाइट कर लिया। यहां पे हमने देखा कि ऋषि शक्ति व्यास जी के साथ यमलोक में गए और फंस गए बेचारे, उन्होंने क्या किया, सोनक आदि ऋषि ने नैमिषारण्य में यमराज जी को इन्विटेशन दे दिया कि यज्ञ चल रहा है, कलयुग आने वाला है, खूब हरिनाम संकीर्तन होगा, खूब हरि कथा होगी, आप आइए। अब किसी वैष्णव को हरि कथा के लिए इन्विटेशन मिलेंगे वो जाएंगे नहीं क्या, यमराज जी आ गए और आगे तो बैठ गए, यमराज जी यहीं बैठे हैं तो किसी की मृत्यु होगी नहीं, सब मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं सबसे बढ़िया तरीका है मृत्यु के भय से बचने का, यमराज जी को इन्वाइट कर दो, यमराज जी महाजन है वो आ जाएंगे। अगर समझ लीजिए आपको यमराज जी का सामना करना पड़ा तो क्या करोगे आप, क्या बोलोगे, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानाम पावने भी हो वैष्णवे नमः, कि महाजन है और यमराज जी भी क्या करेंगे, वो भी प्रणाम करेंगे, चलो बैठिए गद्दी दे देंगे, बैठिए आगे आगे बैठिए, ये महाजन है और कथा सुनिए। अब महाज जब यमराज ही बैठ गए तो मृत्यु को कोई भय नहीं, आराम से सुनो कथा। तो इसी ढंग से ये तरीका है, इसलिए हम मृत्यु को मित्र बना सकते हैं हरिनाम के द्वारा, हरि कथा के द्वारा। पूरी भागवत हम यही उत्तर दे रहा है कि मृत्यु का सामना कैसे किया जाए। जब परीक्षित महाराज जी को मालूम चला कि एक सप्ताह में उनकी मृत्यु होनी है तो उन्होंने ये नहीं किया क्या क्या करूं, कैसे उपाय करूं, किसी ऋषि के पास जाऊं महामृत्युंजय का जप करा दूं क्या, क्या करूं बताइए, कौन सा नग डालूं, कौन सा पत्थर डालूं, कुछ हो जाए, भाई भगवान के पास नहीं गए, अरे भगवान मैं मां के घर में था तब आपने मेरी मृत्यु से रक्षा की थी, अब क्यों नहीं कर सकते, अभी करिए। उन्होंने बोला अच्छा हुआ यार, और उनके पास शक्ति भी थी, वो इस शाप को काउंटर कर सकते थे, बोले अच्छा हो सारे जंजाल से छुटकारा मिला, क्या राजा पड़ा हुआ है, चलो अब सीधा भगवान के चरणों में जाएंगे। सबको त्याग करके गंगा के तट पे चले गए और ब्राह्मणों से पूछने लगे कि अब आप बताइए हमें क्या करना है। उन्हें बोला हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं, कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हरेक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला है, मरणासन हो, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। कितना अच्छा प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक परिस्थिति में क्या कर्तव्य है ये बताइए, और विशेषकर जो मरणासन हो, बिल्कुल मरने वाला हो, उसके लिए क्या कर्तव्य ये बताइए। प्रभुपाद जी बताते हैं पूरा भागवतम इन दो क्वेश्चनों का, इन दो प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। बस कि प्रत्येक क्षण में हमारा क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय हमारा क्या कर्तव्य है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम भय से मुक्त होना चाहते हैं तो प्रत्येक क्षण हमें ये पूछना चाहिए क्या मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। बस एज सिंपल एज दैट, डू व्हाट यू आर सपोज टू डू एट एवरी मोमेंट। अगर हम हर क्षण हमें जो करना है हम उसको कर रहे हैं तो हम भय से मुक्त हैं। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म का पालन कर रहे हैं धर्म हमारी रक्षा करेगा। लेकिन अपने कर्तव्य का पालन नहीं करके चिंतित हैं क्या होगा, ये क्या होगा, वो ऐसा कर लेगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, क्या प्लानिंग करूं, क्या मैनिपुलेशन करूं, क्या राजनीति करूं, उससे तो और भय बढ़ेगा। जो हमारा कर्तव्य है, कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य कौन बताएंगे, हमारे गुरु बता देंगे, गुरु साधु शास्त्र से जो कर्तव्य मिलता है उसका पालन करें। तो ये पूछ रहे हैं कि जो विशेष रूप से जो मरने वाला हो, प्रभुपाद बोलते हैं हर कोई मरणासन है, हर कोई मरने वाला है, कोई अभी मरेगा या कोई ज्यादा से ज्यादा 100 साल के बाद मरेगा। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कौन कितना जिएगा, महत्वपूर्ण ये है उसने जीवन को कैसे बिताया। ये महत्वपूर्ण है कि पूरा जीवन उसने अपने कर्तव्य का पालन किया कि नहीं किया। क्यों हम फालतू में पड़ रहे थे हमारी आयु बढ़ जाए, हम आशीर्वाद दे देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम जियो 1000 साल और साल के दिन हो 50,000, इसका कोई फायदा नहीं है। बोलो ऐसे जियो, ऐसे जियो, मन कृष्ण निवासी है ना, बस हमेशा जो मन है आपका कृष्ण में लग जाए, ऐसे जियो, ये ऐसे ढंग से करो। ये क्या लंबी आयु हो, लंबी आयु से क्या हो जाएगा, और ज्यादा पाप करूंगा। इतना जियो, ऐसे जियो कि हमेशा कृष्ण का स्मरण कर सको। फिर जब व्यक्ति कोई मर रहा है, परीक्षित महाराज प्रभुपाद बता रहे हैं सारे ब्राह्मण इकट्ठे हैं, गंगा का तट है और हरि कथा चल रही है, तो गारंटी अगर ऐसा वातावरण मिल जाए उनका भगवत धाम जाना गारंटी है। भीष्म पितामह जब शरीर त्याग रहे थे 56 दिन के लिए, किस पे थे वो, बाणों के शैया पे थे और शरीर से खून निकल रहा था। आप सोचिए 56 दिन के लिए बाणों की शैया पे लेटे हुए हैं भीष्म पितामह, कितनी पीड़ा हो रही होगी। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण आए, सभी ऋषिगण उपस्थित थे, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते हुए, उन पर मेडिटेट करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुख का दर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, अर्जुन का गुणगान कर रहे हैं, पांडवों का गुणगान कर रहे हैं, गोपियों का गुणगान कर रहे हैं, गोपियों से कृपा की याचना कर रहे हैं। ये सब करते हुए उन्होंने आराम से शरीर को त्यागा। प्रभुपाद लिख रहे हैं ये है निर्विकल्प समाधि, सब कुछ भगवान के ऊपर केंद्रित था। और प्रभुपाद बोल रहे हैं ये परफेक्शन ऑफ लाइफ है, ये जीवन की पूर्णता है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हर मनुष्य इस पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। अब बोले हमारे सामने भगवान उपस्थित होंगे क्या, तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवान उपस्थित ना हो लेकिन श्रीमद भागवतम और भगवत गीता अगर उपस्थित है तो भगवान से अभिन्न है। अगर हम ऐसे वातावरण में शरीर त्याग रहे हैं कि भगलो भगवत गीता का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन कर रहे हैं, सभी भक्त एकत्रित हैं, तो हमारा निश्चित रूप से भगवत धाम जाना गारंटेड है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब पूरा जीवन हमें भक्तों के संग में, भक्तों की सेवा में बिताना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज अपनी मृत्यु के समय इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जिसको डेथ विश कहते हैं। अगर हमारी मृत्यु आ रही हो अभी, चलो मालूम चल जाए, बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ। तो क्या इच्छा बताएंगे, अलग अलग इच्छाएं बता सकते हैं। परीक्षित महाराज बहुत सुंदर इच्छा बता रहे हैं। तत्रा भगवत भवान व्यास पुत्रो, नहीं नहीं क्षमा कीजिए ये नहीं था, हाँ, पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते रति प्रसंगस्तदाश्रयेषु महत्सु याम्यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करते यह प्रार्थना करता हूं, अपनी तीन इच्छाएं उन्होंने बताई, यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म ले लूं तो क्या हो, अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो। रति भगवत अनंते, अनंत भगवान के प्रति मेरी आसक्ति हो जाए, नंबर एक। नंबर दो, प्रसंगश्च तदाश्रयेषु, जो उनके आश्रित हैं, भक्त हैं, उनका मुझे संग प्राप्त हो। नंबर तीन, मैत्रेस्तु सर्वत्र, सभी जीवों से मेरी मित्रता हो। ये तीन उनकी डेथ विश है। अगर दोबारा आना भी पड़े तो क्या हो, भगवान अनंत भगवान के प्रति परिणति हो, भक्तों का संग प्राप्त हो और सभी जीवों से मेरा मैत्री भाव हो, मित्रता हो। तो इस ढंग से परीक्षित महाराज ने बहुत सुंदर तरीके से शिव छोड़ा, तक्षत्रु आए, उनके सामने काटा, लेकिन कोई पीड़ा नहीं हुई, आराम से वो भगवत धाम गए। तो हम लोग इन उदाहरणों से देख सकते हैं कि हम अपने जीवन में अगर अपने मन बुद्धि और शरीर को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगाएंगे और बिल्कुल भयभीत अवस्था में नहीं रहेंगे, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन पूरा पतेंगे, तो अब जीवन में हम भयभीत रहेंगे और मृत्यु के समय हम बहुत अच्छे ढंग से हंसते हुए जाएंगे। तो क्या होना चाहिए, हर क्षण हमें तैयार रहना चाहिए, अभी आ जाए मृत्यु। राजा कुलशेखर बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है, आप सबको याद होगी, आप बोल सकते हैं, कईयों को याद है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अदयेव मे विशतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन वधो स्मरणम कुतस्ता। क्या बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, पद पंकज पंजर अंतम, आपके जो चरण कमल हैं उनका जो जाल है पंजर अंतम, उसके अंदर क्या चला जाए, मेरा मानस राज हंस, जो मेरा ये राज हंस के समान जो मन है चला जाए। कब चला जाए, अदये भी आज ही चला जाए, आज ही अटक जाए मेरा मन आपके चरण कमलों के जंजाल में। क्यों, क्योंकि प्राण प्राणान समय कफवात पित्ते, प्राण त्यागने के समय क्या होगा, कफवात और पित्ते से कंठावरुद्ध हो, मेरा कंठावरुद्ध हो जाएगा और तब मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा। इसलिए आज ही मृत्यु आ जाए, आज ही हम मरने को तैयार हो। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी भी पेपर देने को तैयार होगा, होगा नहीं होगा, जिसने तैयारी ना की हो, कल पेपर आज ही बैठा हो तो उसका बढ़ा भयभीत रहता है। लेकिन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो लुकिंग फॉरवर्ड, कब आएगा, क्योंकि मुझे अगली क्लास में जाना है, मुझे भगवत धाम जाना है। एक भक्त का हमेशा ब्राइट फ्यूचर है, हमेशा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि मुझे आगे ये मृत्यु माध्यम मंत्र कि इस शरीर को त्याग करके सनातन शरीर ग्रहण करो, कितना ब्राइट फ्यूचर है। फिर भी अगर हमें तब भी डर लग रहा है तो गजेंद्र की बहुत सुंदर प्रार्थना है, अंतिम श्लोक है गजेंद्र पर संकट का। वो बता रहे हैं, भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे हैं अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। हमें से हर कोई जो भयभीत अवस्था में रहता है इस श्लोक का याद कर सकता है, आठवें अध्याय स्कंद का, आठवें स्कंद का दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। भगवान निश्चय ही हर एक को ज्ञात नहीं है, किंतु वे हैं अत्यंत शक्तिशाली तथा प्रभावशाली। अतः यद्यपि काल रूपी सर्प प्रचंड वेग से निरंतर मनुष्य का पीछा कर रहा है और उससे निगलने को उद्यत है, तथापि यदि वह इस सब से डर कर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। अतः मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं जो महान एवं शक्तिशाली परम सत्ता हैं और हरेक के वास्तविक आश्रय हैं। इस प्रार्थना को हम याद कर सकते हैं। फिर भी हमें डर लग रहा है तो भगवान के पास चले जाए कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं, ये काल रूपी सर्प मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इससे भय से मुझे बचाए। हम देख सकते हैं जिन भक्तों ने अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए पूरा जीवन बिताया है, उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से शरीर छोड़ा है। हमारे इस कौन संस्था में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक अनेक, और हर श्रेणी के भक्तों का, हर जनरेशन में। स्वयं शिला प्रभुपाद जी आचार्य हैं, प्रभुपाद जी ने हम सबको सिखाया शरीर कैसे त्यागना चाहिए। शरीर अंत लीला तक प्रभुपाद क्या कर रहे थे, अपने धर्म का पालन कर रहे थे, लेटे लेटे क्या कर रहे थे, भागवतम का अनुवाद कर रहे थे, अंत काल तक उनके हृदय में इतनी दया थी, डॉक्टर आके उनकी नर्व्स पकड़ रहा है, प्रभुपाद कह रहे हैं डॉक्टर हाउ आर यू, डॉक्टर रो पड़ा, बोले अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा है आपको पीड़ा से उछलना चाहिए था, कराहना चाहिए था, लेकिन आप पूछ रहे हैं हाउ आर यू। अगर आपने वो पिक्चर देखी हो, आप देखें प्रभुपाद को पहचान भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल हड्डियों के जंजाल हो गए थे प्रभुपाद, और किस तरह से प्रभुपाद अंतिम समय तक 7:25 14 नवंबर 1970 में प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा, तो मार्गदर्शन गोस्वामी महाराज अपनी डायरी में लिखते हैं जब 7:25 हुए प्रभुपाद ने अपनी आंखें खोली और आंखें इतनी चमक रही थी, जो कि पहले प्रभुपाद बंद थे आंखें, आंखें एकदम चमक रही थी, फिर प्रभुपाद ने अपने होठों को खोला, फिर अपने जीवा से कुछ बोले और उसके बाद जीवा वहीं रुक गई।
बस। और साथ में कविराज वैद्य थे, उन्होंने नवनाथ पर बोले अब वो चले गए भगवत्ता। श्री प्रभुपाद की, फिर प्रभुपाद को क्या किया गया, प्रभुपाद को उनकी पालकी पे बैठाया गया और पालकी पे बैठा के जितने भी वृंदावन में सात मंदिर है षट गोस्वामी के, हर मंदिर में उनको ले जाया गया, बैठाकर दर्शन कराए गए, लेट कर नहीं, सिंह गुरु हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद को हर मंदिर में ले जाया गया और हर मंदिर में दर्शन करके प्रभुपाद फिर कृष्ण बलराम के सामने आए, फिर उस पालकी को व्यास आसन पे रखा गया और फिर उनकी समाधि बनाई गई। तो ये प्रभुपाद जी हैं। और हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने कैसे शरीर छोड़ा, इज ओल्डनेस गोरगोन स्वामी महाराज कहते हैं, दिसंबर 1996 की बात है, गोरगोन स्वामी महाराज कहते थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने 1927 में बोला था कि ये जगत सज्जन व्यक्तियों के लिए नहीं है, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू स्टे। तो लगता है मुझे भी चले जाना चाहिए, तो मैं अपने गोपाल जी से पूछ के आऊंगा। तो भुवनेश्वर के पास एक गदाईगिरी गांव है जहां पर उनके गोपाल जी, उनके विग्रह स्थापित हैं, तो उनका दर्शन करके आए। फिर भुवनेश्वर में चार दिन का उन्होंने पंडाल कार्यक्रम किया, प्रभुपाद का सैनिटेरियम फंक्शन चल रहा था। फिर जीबीसी की मीटिंग थी मायापुर में, तो फरवरी में वहां पे गए। तो 9 फरवरी 1996 जब भक्ति सिद्धांत महाराज जी का प्राकट्य दिवस था, तो दो सन्यासी उनके पास आए, बोले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो गोविंद साहिब महाराज बोला ठीक है शाम को आना। शाम को वो आए, उनका प्रश्न क्या था कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास की बात पूरी में ही क्यों रहे। तो गोविंद साहिब महाराज ने बताया कि संघ से जब कृष्ण मथुरा गए, श्रीमती राधा रानी विरह में थी, फिर कृष्ण में विरह में हुए, जब विरह में आकर कृष्ण ने राधा रानी से मिले, तो जब उन्होंने राधा रानी की स्थिति देखी तो कृष्ण का महाभाव प्रकाश रूप प्रकट हुआ, जो कि जगन्नाथ जी का रूप था, और राधा रानी कृष्ण के नेत्र राधा रानी के नेत्रों से मिले, ये उनका मिलन हुआ। इतना कहते ही गोविंद स्वामी महाराज भाव में चले गए, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा, बोले अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और वो लेट गए, और लेट गए और उनके शिष्य ने उनके हाथ में गोपाल जी का चित्र पकड़ा दिया, और उनको देखते हुए उन्हें एक बार बोला गोपाल, और एकदम शांत हो गए। जब शांत हो गए तो उनके शिष्य तुरंत मायापुर में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे उनको बुलाने गए, वो भाग के आए, तो देखे तब तक कई डॉक्टर और आ चुके थे, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये अब चले गए। जब मैं आया तो मैंने देखा कुछ कंफ्यूजन फैला होता, कुछ कहने कृष्णा नगर ले जाओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कुछ हो जाएगा, डॉक्टर कहते नहीं इनका शरीर चला गया। तो कबीराज ने जब देखा तो बोला नहीं अभी है जीवन, अभी 10-15 मिनट दीजिए मैं बताता हूँ आपको। फिर 15 मिनट के बाद फिर देखा, बोला नहीं अब चले गए। तो कबीराज जी बताते हैं कि जब मैंने देखा था तो उनके पल्स थी, बोले ये कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हार्ट फेल हो गया उनका, उनको पंपिंग करें शायद आ जाता, पल्स थी लेकिन ये अष्टसात्विक विकार था। और फिर बोले ऐसी मृत्यु मैंने कभी नहीं देखे, गोपाल का नाम लेते हुए उनका स्मरण करते हुए आराम से शरीर त्याग, कोई पीड़ा नहीं। हिजोलनेस भक्ति थी स्वामी महाराज जानते। टोरंटो में रथ यात्रा चल रही थी, वहां पे खूब नाचे, मालूम चला पैर में कुछ पीड़ा हो गई, एक फोड़ा सा दिखाई दे रहा था, तो पहले अमेरिका ले गए उनको, कहते हैं कोई डेट्रॉइट में हॉस्पिटल था वहां पे, फिर उनके शिष्य ने बोला वाशिंगटन डीसी में उस हॉस्पिटल में दिखाएंगे। तो बायोप्सी की गई, तो बायोप्सी करके जब हुई तो उनको मालूम चल गया उनको कैंसर 4th स्टेज। तो व्हील चेयर में आ रहे थे, बैठकर अपना पूरा चेकअप करा के उनको मालूम चल गया, तो उनके शिष्य खड़े थे, हंसते हुए बोला मुझे मेलानोमा हो गया है, कैंसर की 4th स्टेज है, डॉक्टर बोल रहे हैं 6 महीने तक रहना। अरे ऐसा बोला उनके शिष्य को विश्वास ही नहीं हुआ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए ऐसा बोल रहे हैं 6 महीने का है बस। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कुछ समय तक वहां रहे, फिर वो गीता नगरी में आ गए, उनके पास स्वेच्छा थी, वो चाहते तो मायापुर या वृंदावन आ सकते थे, वो बोले नहीं गीता नगरी जो मेरा गुरुदाता देश है, जिस कम्युनिटी को मैंने डेवलप किया उसके बीच में रहूंगा, मैं दिखाना चाहता हूं यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्तगण मेरा कीर्तन करते मैं वहीं रहता हूं, सब जगह वही जगह वृंदावन है। तो वहां पर रहे और प्रतिदिन वहां पे संडे लव फीस प्रोग्राम होता था शाम को, उसमें आते थे और लोगों से शेयर करते थे कि मरने का क्या अनुभव है, इस संसार में कोई करेगा कि मैं कैसे शरीर त्याग रहा हूं बताएगा, बोले बड़ी पीड़ा होती है क्या करूं, खांसेगा खून की उल्टी आ रही है, जीभ में छाले पड़े हुए हैं, कुछ खाया नहीं जाता, 10 दिन से कुछ खा नहीं रहा हूं, सूप पीता उल्टी आ जाती है, बहुत बुरी हालत है, बेड पे ही पड़े पड़े मन मुंह त्यागना पड़ता है, बहुत यही बताएगा आपको। आप भी बोलेंगे छी छी चलो चलो कोई बात नहीं, उसके पास टिकना भी नहीं जाएगा व्यक्ति, आ जाते हैं।
लेकिन सारे भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं, वो बता रहे हैं मरने का क्या अनुभव है। इस परिस्थिति में उन्होंने 3 किताबें लिख दी, अलग अलग प्रार्थनाएं। क्या एक बड़ी विशेष घटना है, 2003 में प्रभुपाद जी को उन्होंने जो व्यास पूजा लिखी थी उसमें यह लिखा था कि प्रभुपाद जो मेरे भक्ति के लिए अवरोधक हो और सब भक्तों के लिए भक्ति में अवरोधक हो वो हटा दो और जो चाहिए वो दे दो। 2004 में उन्होंने फिर प्रार्थना की कि इस कौन में जितने भक्त हैं कुछ संकट में रहते हैं उन सबके संकट मुझे दे दो। वो बचपन से ही ऐसी प्रार्थनाएं करते थे वासुदेव दत्त के मूड में, सबके संकट मुझे दे दो, और 2004 में ही कैंसर डिटेक्ट हो गया है। सब भक्तों के संकट लेके अपने ऊपर और हंसते हुए वो शेयर करते थे कि मुझे क्या अनुभव हो रहा है। और जब स्थिति और आगे बढ़ती गई, आप सोचिए ऐसा व्यक्ति संडे लव फिस्ट प्रोग्राम में आकर सब भक्तों के बीच में बातचीत कर रहा है। जब स्थिति और बहरी हो गई, उनकी स्थिति और खराब हो गई, फिर उन्होंने बिल्कुल अलग कर लिया। फिर उन्होंने एक लेक्चर दिया तो हम सबने देखा था उस वीडियो लेक्चर में, है ना, बोल रहे थे आई नो वेयर आई एम गोइंग, हंसते हुए मुझे मालूम है हरी बोल, मैं जानता हूं मैं कहां जा रहा हूं और मुझे मेरी सेवा भी मालूम है, तो डरो मत, मुझे जब आना होगा आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे आपके सपने में आके दे दूंगा। फिर इस भक्त से मजाक किया, शायद उनको आइसक्रीम अच्छी लगती थी या कुछ पिज्जा अच्छा लगता था, बोले हाँ जब मेरी इच्छा होगी मैं आपको बुला लूंगा, वो खाने की इच्छा होगी तो। ये कहकर फिर श्री होलीनेस राधा स्वामी महाराज के साथ उन्होंने अंतिम क्षण बताए, चैतन्य चरितामृत पर चर्चा करते थे घंटों घंटों बैठकर, और फिर आराम से जून 2005 में भक्तों के बीच में जब बिल्कुल अंतिम क्षण हो गई सारे भक्त उनके कमरे में आगे खूब कीर्तन करते हुए उन्होंने श्री दिया। देखिये भक्ति थे स्वामी महाराज के, गोरगोविंद स्वामी महाराज के, ऐसे बहुत उदाहरण है। ये तो प्रभुपाद, प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद के शिष्य अगले जनरेशन। आप बनते सॉल्टेड ब्रेड वो पुस्तक पढ़िए, उसमें हरिकेश महाराज जी के शिष्य हैं सच्ची सुता प्रभु, जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी, बहुत कष्ट उठाए प्रचार करने में। तो उनके एक बार क्या हुआ, जॉर्जिया में सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, 1988 में गोर्बाचोव ने परमिशन दे दी कि ठीक है इस्कॉन एक रिलीजन है ऑथराइज। तो जब हरिनाम कर रहे थे तो कीर्तन करते हुए जॉर्जिया में एक व्यक्ति उनके पास आया, बोले आप जैसे जो भक्त हैं मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका एक भक्त मेरे साथ जेल में रहता था, मैं तो नास्तिक था लेकिन वो बहुत बड़ा भक्त था, बहुत विनम्र था, हमेशा हरे कृष्ण बोलता रहता जो ये मंत्र आप बोल रहे हैं, तो उसको मैं भी सीख गया। तो ये बता रहे हैं व्यक्ति कि वो सचिस होता उसको डायबिटीज हो गया था और हमेशा भूखा रहता था, उसको जेल से बोलता था कि मुझे कुछ ब्रेड दे दो और पुबले आलू दे दो, वो भी नहीं देते थे, वो क्या देते उनको ब्रेड देते थे, उस ब्रेड पे मच्छी लगी होती थी तो खा ही नहीं पाते थे, कई दिन बीत जाते थे बिना कुछ खाए, फिर भी वो लेते नहीं थे, वो जो ब्रेड मिलती थी वो अपने मित्र को देते थे। तो अंतिम दिन जब उनका आना था तो क्या किया, उन्होंने अपने मित्र को बुलाया जो उनके जेल के साथ रहता था, बोले आज मेरा हेड शेव कर दो। बोला अजीब सी बात लगी, बोले हेड शेव कर दी, बोले थोड़ी सी चोटी रख दो। फिर क्या किया, उनके पास एक मैगजीन थी उसमें से कुछ कलर्ड फोटो थे उसको फाड़कर हार बना लिया, फिर टूथपेस्ट से तिलक लगा लिया और फिर पद्मासन में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। तो बोले आज बड़े खुश लग रहे थे, बैठे हुए थे हंस रहे थे और जप कर रहे थे, बैठे हुए थे हंस रहे थे जप कर रहे थे। तभी उनके मित्र को कुछ बीमारी थी वो चला गया और कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा के 20 मिनट बाद आया तो बोले ऐसे ही बैठे हुए, तो बोला अब बैठे हुए हंस रहे हैं, तो बाबा प्रश्न पूछ रहे क्या हो गया पूछ रहे, बस उनको बैठे हुए हंसे दिखाई दे रहे हैं। जब पास जाके देखा तो वो शरीर त्याग चुके थे। बोले ये है मेरे लिए असली हीरो, मैं ऐसे बनना चाहता हूं, मैं भी ऐसे शरीर त्यागना चाहता हूं। हंसते हुए, इतने संकट थे उनके ऊपर, इतनी पीड़ाएं मिलती थी, कोई डर नहीं उनको, जब पीड़ाएं मिलती थी वो हरिदास ठाकुर का स्मरण करते थे। तो हमें सीखना है चाहे कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, भक्ति स्वामी महाराज हरिनाम ले रहे थे, सच्ची सुता प्रभु जेल में इतने कष्टों के बीच में हरिनाम ले रहे थे, सूखी ब्रेड जो उनको ब्रेड मिलती थी उसको सुखा देते थे, उसकी माला बना के उसे हरिनाम लेते थे, टूथपेस्ट से तिलक लगा लेते थे। हर परिस्थिति में धर्म का पालन कर, हर परिस्थिति में भक्ति की जा सकती है, अप्रतिहता ये रुक नहीं सकते। हम लोग छोटी सी तकलीफ होती है माला छोड़ देते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, मन की बातें सुनते हैं, हर परिस्थिति में अगर हम धर्म का पालन करेंगे तो भय से बचेंगे और मृत्यु के भय से बड़े आराम से छुटकारा पा जाएंगे, कोई समस्या नहीं। हंसते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। समय हो रहा है, बहुत ही कथाएं याद आ रही है। हमारे एक थे भक्त जो मुझे बहुत सुनकर रोमांच होता है, हमारे एक भक्त हैं वंशी बिहारी प्रभु, चौपाटी मंदिर में ब्रह्मचारी हैं, उनके पिताजी थे राम दुलाल प्रभु। जब वो मंदिर में उन्होंने ज्वाइन किया उनको बहुत गुस्सा आया, मंदिर में आकर उन्होंने लड़ाई की दीनायक प्रभु से, हाथापाई भी कर ली, गालियां दी उनको, क्या मेरा बेटा ले लिया वो कर लिया, लेकिन थे अच्छे व्यक्ति, धीरे धीरे वो भी भक्त बन गए, प्रतिदिन मंगल आरती में आते थे, आयु ज्यादा नहीं थी, लगभग 60 वर्ष की आयु थी, फिर वो बीमार पड़ना शुरू हो गए, नहीं आना चला, मालूम चला उनके लंग्स फेल कर गए, महाराज अग्रसेन में एडमिट हो गए, उनका बेटा भी उनको देखने आया बॉम्बे से, मैं भी उनको मिलने गया, मैं चलो जरा जाएंगे उत्साह बढ़ाएंगे, मैं गया उनके पास तो सारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब लगा हुआ, आईसीयू में पड़े हैं, मैं कैसे हो, कहता बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बोला नहीं जा रहा था, रात भर नींद नहीं आ रही, घुटन हो रही है, लंग्स काम नहीं कर रहे हैं, मशीनों पर चल रहा है सब कुछ, थोड़ा बहुत उनको बोल रहे हैं, बोले बहुत कृपा है, मैं कैसी कृपा है, कहता नींद आती नहीं, बस भगवान का नाम लेता हूं, स्मरण करता रहता हूं, बहुत कृपा है। आप सोचिए, हम उनका उत्साह बढ़ाना चाहते थे, उनके पास जाते थे, हमारा उत्साह बढ़ जाता था। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा, उनके बेटा उनके सामने गया, गौरनिताई के दर्शन कराए, गौरनिताई के दर्शन कराते हुए आराम से शरीर छोड़ा, और जब शरीर छोड़ा, उनकी डेथ विश क्या थी, ये नहीं थी मेरी बेटी को ये प्रॉपर्टी देना, तुम ये प्रॉपर्टी ले लेना, नहीं, उनकी डेथ विश ये थी, बाय चांस कुछ समय पहले जब वो स्वस्थ थे, उन्होंने मुझे लाइफ मेंबरशिप बनने के लिए चेक दिया था, तो 14 समय उसमें थे, उसमें कुछ 7,000 दिए थे, बाद में दूंगा, तो भूले नहीं उस समय, मन की स्थिति देखो, 7,000 दिया हुआ है, 7,500 बाकी है, बोले रुक्मिणी कृष्ण को चेक दे देना लाइफ मेंबरशिप का, और दूसरा मेरे लिए एक बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम करना, सब भक्तों को लाके फीस्ट करना, बस ये दो इच्छा है, लिख के दी, बोल नहीं पा रहे थे। गौनिराय के दर्शन करते हुए आराम से शीर चढ़ा, और जब वंशी बिहारी प्रभु आईसीयू से बाहर आए, तो मैंने उनकी आंखों में एक विशेष चमक देखी, मुझे अभी तक उनका वो चेहरा याद है, वो रो नहीं रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे में विशेष चमक थी, जो मैं चाहता था, जो मैं प्रार्थना कर रहा था, वो मेरे पिताजी के साथ वैसा ही हुआ। यह है गौनिताई की विशेष कृपा। किस बात का डर, कृष्णा भावामृत में आने के बाद भी हम अपने को असुरक्षित अनुभव करें, धिक्कार है हमें, किस बात की असुरक्षा, किस बात का भय, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए, अगर हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर तो भय लगेगा ही, फिर तो चिंताएं होंगी होंगी, अगर अपने धर्म के जो हमारा कर्तव्य है उसको करेंगे, अभी भी कोई भय नहीं रहेगा, और मृत्यु का सामना भी बड़े हंसते हंसते करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत से उदाहरण है। और अगर कोई भक्त समझ लीजिए, ये कृष्णा भावामृत आंदोलन इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली, जैसे गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं आप, बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली है, जो व्यक्ति भक्ति में जुड़ जाता है वो तो भय से मुक्त होता ही होता है, उसके सगे संबंधी भी भय से मुक्त हो जाते हैं, है ना, सबका अनुभव। समय हो गया, हमारे सुंदर कृष्ण भैया बैठे हैं, है ना, प्लीज हाथ खड़ा कर सकते, खड़े हो सकते हैं, इनके पिताजी का अनुभव, इनके पिताजी को कैंसर था, है ना, कैन यू रिलेट योर एक्सपीरियंस, इट विल बी सो मच, इट्स सो इंस्पायरिंग। समय थोड़ी लगी, सुनिए ये अनुभव आप सुनेंगे, जीवंत उदाहरण, अभी कुछ महीने पहले है ना, सो प्लीज बताइए पूरा शुरू से, थोड़ा बता सकते, खड़े होकर बता सकते हैं, सामना करते हैं सर, स्टैंड अप, फेस पे जोर से माइक में,
पहले मई में उनको टंग कैंसर हुआ था,
लंग कैंसर,
टंग कैंसर,
टंग, अच्छा,
टंग कैंसर, तो उस समय उनका ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर ने, मतलब उसको फर्स्ट स्टेज कैंसर था,
थोड़ा जोर से बोल देंगे,
मतलब फर्स्ट स्टेज कैंसर था टंग कैंसर, तो उस समय उनको ऑपरेशन हुआ उनका उसके बाद, और ऑपरेशन के बाद मतलब डॉक्टर ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही रहेंगे, तो उसके बाद आफ्टर जैसे नवंबर में उनको बहुत ज्यादा खांसी होने लगी थी, मतलब खांसी जा रही थी, एक महीना हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला टीबी हो सकता है, तो उसके बाद उनकी बायोप्सी हुई और उसमें पता लगा कि उनको मतलब फोर्थ स्टेज लंग कैंसर है, लंग और लीवर कैंसर और टंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उसके बाद जैसे डॉक्टर ने बोला कि अब मतलब मैक्सिमम 6 महीने तक ये मतलब कर पाएंगे स्टे, तो उसके बाद जैसे 3 दिसंबर को उनकी रिपोर्ट आई थी, तो हम लोग काफी ट्राई कर रहे थे, मतलब सब जगह हॉस्पिटल में 5-6 हॉस्पिटल में गए, वहां पे कुछ हो सकता है, तो फिर कीमोथेरेपी लास्ट ऑप्शन था, तो उसी के लिए हम ले गए थे कर्कट दुकान, और लास्ट में मतलब सांस का लेवल मतलब जो होता है बहुत कम हो गया था, ऑक्सीजन डीप होने लगा था, तो जैसे बिल्कुल कम होता तो आईसीयू में चले गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि जैसे मैं और मेरा बेटा गए थे साथ में, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि बस आज कल या परसों मतलब नहीं तो वेंटिलेटर, तो जैसे ही मेरे उसके बाद सब कि मैं और मेरा बेटा हम दोनों रोने गए थे, फिर उसके बाद समझ नहीं आया क्या कह रहे थे, आपसे मेरी बात हुई थी, आपने बोला कि उनको भक्तियों ने हॉस्पिटल नहीं आया, तो फिर वहां पे फिर घर वाले सारे अगेंस्ट है कि कोई क्या जरूरत है, क्यों मतलब बेकार बात के गलत मतलब कुछ हो जाए रास्ते में कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी मतलब भगवान की कृपा थी कि सारे लोग मान गए और हम लोग भक्ति हॉस्पिटल मतलब ठीक ठाक पहुंच गए थे, नौ मतलब रात को 9 बजे पहुंच गए थे। और फिर वहां पे जैसे मंदिर से भी पैमाने पूजे और क्या होता है मोहन को चंपू केशव राम को, तो लोगों ने पूरी रात भर कीर्तन किया उनके लिए। और फिर रात भर कीर्तन करने के बाद अगले दिन सुबह मतलब पता लगा कि गुरु महाराज जी वहां पे आ रहे हैं, तो गुरु महाराज जी आए वहां पर और कीर्तन चल ही रहा था, तो गुरु महाराज जी ने आकर मतलब मात पहली बार आए थे हाउस पाइस में पता मतलब पता लगा, और एक ही रूम में आए थे महाराज, और उसमें महाराज आए, महाराज ने मतलब फादर को माला पहनाई, किशवराम को महाराज माला दी और उनको मतलब तो महाराज वहाँ पे 10-15 मिनट वहाँ पे गुजारे, काफी बताए गए कि जीवन में कोई मतलब सभी की हानि है। और फिर महाराज मतलब सब भक्त लोग कीर्तन करते, जैसे महाराज बस निकले ही हैं और जब भी फादर की एकदम आँख इतनी ज्यादा खुल गई कि मतलब पीछे 2 महीने में इतनी नहीं खुली होंगी, तो जैसे मैंने फिर मैं बिल्कुल पास में था तो नर्स से पूछा कि क्या हुआ एकदम, तो बोले कि नियर डेथ एक्सपीरियंस है मतलब नियर डेथ सिम्टम्स हैं। तो फिर सभी भक्त लोग ने बहुत जोर जोर की कीर्तन करना शुरू कर दिया वहाँ पे, और केशव राम जी ने उनके कान में कीर्तन शुरू करना कर दिया, मतलब आंखों के सामने केशव राम जी की मतलब विग्रह रखे और मतलब एमिनेशन थी, और भक्त लोग बहुत ज्यादा तेजी से कीर्तन होना था, मतलब बहुत अच्छी स्थिति में मतलब
हरि बोल जय। आप सबको सुनाई दिया पीछे समझ आया है ना, नहीं समझ आया मेरे ख्याल से, लंग कैंसर था डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर ने बोला 6 महीने एडमिट हुआ तो बोले बस आज कल या परसों तक मतलब तो वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। इन्होंने फोन पे बात की मुझसे, मैंने इनको सजेशन दी कि वृंदावन में हॉस्पाइस है, आप जानते हैं हॉस्पाइस वो जगह है जहां पे कि मरणासन बिल्कुल जिनकी मृत्यु पर आने वाली है वो लोग एडमिट होते हैं, वहां डॉक्टर्स हैं पूरी केयर दी जाती है लेकिन साथ साथ हरिनाम सुनाया जाता है, तो वहां एडमिट हो गया। जब वहां ले जाने लगे तो घर वालों ने बहुत अपोज किया, नहीं ले जाओ, रास्ते में शरीर त्याग दिया तो वेंटिलेटर पर रख देते हैं। तो फिर भगवान ने बुद्धि देने बोला नहीं वहीं ले जाऊंगा, तो कुछ घर वाले इनके मान गए, तो यहां से वृंदावन ले जाना था उसमें एम्बुलेंस में, यही बहुत बड़ा चैलेंज था, रास्ते में शरीर छोड़ देते सारे घर वाले इनको जीवन भर गालियां देते रहते, अपने पिता को मार दिया पूरा, उन्होंने रिस्क लिया भगवान का नाम लेते हुए गए, मंदिर से कुछ ब्रह्मचारी गए वहां पे, और जब हम हॉस्पिटल में गए तो पूरी रात कीर्तन सुनाते रहे उनको। अगले दिन सुबह हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज उनसे मिलने आए और अपने गले से कृष्ण बलराम की माला उनको दी, 10-15 मिनट उनसे बात की, और जैसे ही महाराज गए वापस तो उन्होंने बड़ी जोर से आंखें खोल दी। उन्होंने आंखें क्यों खोली है, तो नर्स ने बताया नियर डेथ एक्सपीरियंस, बस मृत्यु होने वाली है। सारा हॉस्पिटल स्टाफ सारे भक्त जोर जोर से कीर्तन करने लगे, आंखों के सामने कृष्ण बलराम का चित्र दिखाया और बड़े आराम से उन्होंने शरीर को त्याग दिया। और इनके पिताजी कोई माला नहीं करते थे, ये दीक्षित भक्त हैं 16 माला करते हैं, इंजीनियर हैं, कॉलेज में प्रचार कर रहे हैं, ये अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इनके पिताजी की भी उनको धाम में ले जाएगा सीधा देखिए। और क्या चाहिए मरने से पहले, जैसे बता रहे हैं यहां पे भक्तों का संग हो हरि नाम हो निश्चित रूप से गारंटी है उसका भगवत धाम चाहिए। बहुत केसेस हैं हमारे मलकोर बन जाते थे देवात्म नारायण प्रभु है ना, वे मायापुर में थे, इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, मंदिर से हमारे श्याम कृष्ण प्रभु गए थे और एक और भक्त गए थे, मृत्यु होने ही वाले थे, पहुंच गए मुख में गंगा राधा कुंभ का जल डाला, तुलसी डाली, कीर्तन किया, कीर्तन करते करते देखते उन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने बहुत उदाहरण देखे हैं, इसलिए हम लोग इतने अच्छे स्थान पर इतने सुरक्षित स्थान पर हैं, तो हमें किसी चीज का भय नहीं होना चाहिए और पूरे जीवन हमें ये देखना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं कि नहीं। हमें इस जीवन में भी भय से मुक्ति मिलेगी, मृत्यु के समय बड़े आनंद से हम शरीर को छोड़ेंगे और फिर भगवत धाम वापस जाएंगे, और हम अगर हम अच्छे ढंग से पालन कर रहे हैं हमारे से जुड़े जितने लोग हैं वो भी भगवत धाम चले जाएंगे। कितना आनंद है। चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। आप सबका बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, समय ज्यादा हो गया।